आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 2 को आधा पढ़ा था, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इस चैप्टर के राइटर हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी को आधा पढ़ा था। ये स्टोरी करेज, साहस को दिखाती है कि साहस कितना ज़रूरी होता है, और इंसान के अंदर अगर विश्वास है, साहस है, तो वो किसी भी मुसीबत का बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से मुकाबला कर सकता है। तो ये बताते हैं, एक फैमिली है 4 की, जिसमें ऑथर है, उनकी बीवी, 2 बच्चे हैं, बेटा 6 साल का, बेटी 7 साल की। ये जाते हैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए शिप में बैठकर। इनकी काफ़ी अच्छी यात्रा रहती है अफ्रीका के केप टाउन तक। वहाँ पर ये 2 असिस्टेंट्स को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सदर्न इंडियन ओशन है वो बड़ा ही खतरनाक है। जो दक्षिण हिंद महासागर है, वहाँ पर तूफान वगैरह ये सब आता ही रहता है। तो इन्होंने 2 हेल्पर्स ले लिए, एक है लैरी विजल और दूसरा है हर्ब सेजले। अब ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इनका क्रिसमस भी बीत जाता है, लेकिन फिर समुद्र में तूफान आना शुरू हो जाता है। इन्हें लगता है कि मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 जनवरी को मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि लगभग 15 फीट ऊँची लहरें समुद्र में नज़र आती हैं, और एक ऐसी ही लहर आकर उनके शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनके शिप को, उनके जहाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जगह जगह से वो टूट जाता है, और साथ के साथ नुकसान होता है इन लोगों को। ऑथर का सिर टूट जाता है, उसकी रिब्स की हड्डियाँ, वो जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, वो भी टूट जाती है। उसके मुँह में टूटे हुए दाँत और खून भर जाता है। उसके बीवी बच्चों को भी चोट लगती है। उसकी बेटी सुजैन का सिर कहीं पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसमें पूरे में सूजन आई होती है। साथ ही साथ उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा कट भी लगा हुआ होता है। बहुत ही बुरी उनकी हालत हो जाती है। शिप में नीचे पानी भरने लग जाता है, उनके पंप्स काम नहीं कर रहे होते, और फिर थोड़ा से जुगाड़ के साथ वो एक पंप को काम कराने में लगते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे रिपेयर करते हैं। जो उनके पास दूसरा इंजन होता है, वो भी पानी भरने की वजह से ख़राब हो जाता है। यानी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उस टाइम पर कर रहे थे। ये सब जब चल रहा था, तो फिर ऑथर ने सोचा कि अब तो बचना है, किसी भी तरह से बचना है। ऑस्ट्रेलिया तक तो हम पहुंच नहीं सकते, ये बात तो पक्की है। अब बचे कैसे? तो वो मैप निकालता है, कंपास निकालता है, चेक करता है कि पास में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो जाकर रेस्क्यू हो सके, बच सके, अपने आप को बचा सके। तो वो देखता है कि पास में ही टापू हैं, बहुत छोटे छोटे, जिन पर वो जा सकता है। उनमें से एक टापू है एल एम्स्टरडैम, जो वहाँ से थोड़ी पास था, ज़्यादा नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली वो पास था। ऑस्ट्रेलिया तक तो वो जा ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि यही हमारी लास्ट होप है, यहीं पर हम जाएंगे और यहाँ जाकर बच जाएंगे। लेकिन वहाँ जाना भी तो मुश्किल था ना, वहाँ तो समुद्र में तूफान आया हुआ है, काली घटाएं छाई हुई हैं, लहरें न जाने कहाँ लेकर जा रही हैं शिप को। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस लास्ट होप, लास्ट आशा के साथ ये डिसाइड किया कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे, इसी तरह वो शिप को उस साइड मोड़ेंगे और उधर पहुँच जाएंगे, जिससे वो अपनी जान बचा सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ लिया था। आगे की स्टोरी को पढ़ने के लिए आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 16 पर आइए। पेज नंबर 16, पैराग्राफ 3। ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So, we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuit, and we ate our first meal in almost 2 days. अब दिन था 4 जनवरी का। उस दिन 36 घंटे 36 आवर्स लगातार पंपिंग करने के बाद इतना हो गया था कि जो शिप है उसमें से पानी लगभग खत्म हो गया था। अब हमें यानी उन लोगों को बस पंपिंग इतनी रखनी थी कि पानी उस शिप में इकट्ठा ना हो सके। अभी भी वो लोग सेल नहीं चढ़ा सकते थे क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो ये पक्का था कि उनकी सारी शिप टूट जाती, चिथड़े उड़ जाते उनके शिप के। इसीलिए उन्होंने सिर्फ तूफान आने के समय यूज होने वाली चीजों का ही यूज किया और उन टापू की तलाश शुरू कर दी। मैरी को सामान में थोड़ा बीफ और कुछ बिस्किट मिल गए थे और इस तरह 2 दिन बाद उन लोगों ने अपना पहला खाना खाया। बट आर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. उसके बाद जो उनकी खुशी थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि लगभग शाम 4 बजे उनके पीछे फिर से काले बादल बनने शुरू हो गए थे। हवा की जो स्पीड है वो भी 40 knots पर आर हो गई थी और समुद्र दोबारा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया, यानी समुद्र में भी उफान आने लग गया था। सारी रात ही मौसम खराब रहा था और 5 जनवरी की सुबह आते आते उनकी हालत फिर से खराब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on. We are not afraid of dying if we can all be together. You and mummy, Sue and I. फिर जब ऑथर बच्चों को तसल्ली देने के लिए उनके कमरे में गए तो जॉन ने उनसे जाते ही पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? ऑथर ने कोशिश की कि वो उसे समझा सके कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बोला, हम मरने से नहीं डरते, बस इतना हो कि हम सब साथ रह सके, मैं, मम्मी, सू और आप। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. John की इस बात का author के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था बच्चों के cabin से बाहर जाते समय कि एक बार फिर वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से पूरे फैमिली को, जितने लोग उनके साथ थे, उन्हें समुद्र से बचा सके। कमजोर एरिया को बचाने के लिए ऑथर ने लहरों के सामने शिप को रोक दिया। इसके लिए उन्होंने एक नायलॉन की रस्सी से बने लंगर का यूज किया और उसके बाद 22 लीटर पैराफिन के बैरल भी ले आया था। दैट इवनिंग Mary and I sat together holding hands. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was very near. उस शाम को मैरी और ऑथर दोनों हाथ में हाथ डाले बैठे रहे। जैसे जैसे शिप हिलती रही वैसे वैसे टूटे हुए एरिया में से और पानी शिप के अंदर आता रहा और इन दोनों को लग रहा था कि अब इनका अंत बहुत करीब है, यानी अब ये सब मरने वाले हैं, क्योंकि अगर पानी आता रहेगा शिप में तो शिप का डूबना नॉर्मल है, शिप तो डूब ही जाएगी। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स. चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 17 पर आइए. चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. लेकिन जो वेव वॉकर है उनका शिप है वो उन लहरों से लड़ने में कामयाब रहा. 6 जनवरी की सुबह हवा धीमी हो गई और ऑथर ने सेक्सटेंट को पढ़ना शुरू कर दिया और चार्ट रूम में आकर उसने एयर या विंड की क्या स्पीड है और क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके उस रास्ते में और पानी का बहाव और अपनी पोजीशन इन सभी की कैलकुलेशन करनी उन्होंने शुरू कर दी. वो सिर्फ ये पता लगा पाए कि वो 150,000 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में थे और इतनी बड़ी जगह में बस 65 किलोमीटर चौड़े टापू को खोजने में लगे हुए थे. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made.
अब ऑथर कह रहे हैं कि जब वो इस बारे में सोच ही रहे थे, इतने में सू उनके पास आ गई. उसके सिर के बाएं तरफ बहुत ज्यादा सूजन आ चुकी थी और उसकी आंखें काली पड़ गई थी. उसने ऑथर को आकर एक कार्ड दिखाया जो उसने खुद बनाया था.
On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it.
अब जो वो कार्ड था उसके फ्रंट पेज के ऊपर ऑथर और मैरी जो कि उनकी पत्नी थी उनके कैरिकेचर्स यानी कार्टून टाइप बनाए हुए थे और लिखा था कि ये कितने फनी लोग हैं, क्या आपको इन्हें देखकर हंसी आई? मुझे तो बहुत हंसी आई. और कार्ड के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें लिखा था, ओ मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है और हम सब ये आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऑथर कहते हैं, मैं भी ये जानता था कि किसी भी तरह हमें सब कुछ ठीक करना तो था ही.
आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean.
अब उन्होंने बार बार अपनी calculations को check किया. वो अपने main compass को खो चुके थे. उनके पास एक और compass था लेकिन जो इसमें magnetic variations है उन्हें ठीक नहीं किया गया था. Author ने इसका भी सहारा लिया और जो हिंद महासागर के इस भाग में होने वाले बहाव है उनका भी अनुमान उसने लगा लिया था.
About 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him, with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 PM.
लगभग 2 बजे वो ऊपर गए और उन्होंने लैरी को कहा कि 185 डिग्री की दिशा में मोड़ दो शिप को. अगर उनका जो अनुमान है वो गलत नहीं हुआ तो 5 बजे उन्हें टापू दिखाई दे जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा.
Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke up it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island and the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds.
उसके बाद जो ऑथर था वो नीचे आ गया और अपने बिस्तर पर पहुंचते ही उन्हें नींद आ गई. उनकी नींद लगभग 6 बजे खुली और अंधेरा होना शुरू हो गया था. ऑथर को लगा कि शायद वो टापू से आगे निकल गए होंगे और जैसी हालत उनकी सेल की थी, उसकी हेल्प से वापस जाना तो अब मुमकिन था ही नहीं। एंड दैट मोमेंट अ टॉजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। सू वाज राइट बिहाइंड हिम। उसी समय जॉन उनके बिस्तर के सामने आया और उनसे पूछने लगा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? सू भी ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी। Why am I getting a hug now? I asked. तो ऑथर ने पूछा, तुम इस समय मुझे क्यों गले लगाना चाहते हो? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. फिर उनके बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि आप ना बस पूरे दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, बल्कि आप एक बहुत अच्छे कैप्टन भी हो। Not today, John, I'm afraid. लेकिन ऑथर ने कहा, आज नहीं जॉन, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। Why, you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. सू ने कहा, आपको अब डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस टापू को खोजने में सफल रहे। What? I shouted. फिर एकदम से ऑथर के मुंह से निकला, क्या? It's out there in front of us. They chorused, as big as a battleship. तो उन्होंने कहा, वो बस हमारे ठीक सामने है, इतना बड़ा जैसे कोई लड़ाकू जहाज हो। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of El Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. फिर ऑथर भागता हुआ डेक पर आया और अपने सामने El Amsterdam द्वीप जो आइलैंड था उसे देखकर बहुत ज्यादा उन्हें तसल्ली हुई। वो किसी ज्वालामुखी वाली चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा था और इसके ऊपर पेड़ पौधे तो ना के बराबर थे, लेकिन इस समय वो ऑथर और जो भी लोग उस शिप पर थे उन सभी के लिए पूरी दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 18 पर आइए। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। फिर रात को उन्होंने उस आइलैंड के किनारे ही लंगर डाल लिया और सुबह उस आइलैंड के सभी 28 लोग जो वहां पर रहते थे उन्होंने उन लोगों को उस शिप में से निकाला और उनका खूब स्वागत किया। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. जब ऑथर के पैरों के नीचे दोबारा से धरती आ गई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। वो लैरी और हर्ब के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने इतने मुश्किल टाइम में भी अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखा, और मैरी के बारे में जो लगातार उस टाइम पे व्हील पे खड़ी थी, और सबसे ज्यादा उन्होंने सोचा अपनी बेटी सू के बारे में जिसने अपनी चोटों की कोई चिंता नहीं की ताकि हम लोग चिंता ना कर जाए। बाद में इन्हें सू के लगातार 6 ऑपरेशन कराने पड़े ताकि उसकी जो स्किन और स्कल है उसके बीच में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, यानी ब्लड जम गया था वहां पर, उसे हटाया जा सके। और ऑथर को अपने बेटे के बारे में सोचकर भी बहुत अच्छा लगा जो मौत के मुंह में जाकर भी डरा नहीं और ये कह रहा था कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने स्टोरी को खत्म कर लिया है। आपने देखा कि ये कितने ज्यादा साहसी फैमिली थी, कितने ज्यादा साहसी लोग थे जिन्होंने अपना मेंटल बैलेंस बिल्कुल नहीं खोया। जो भी इनके सामने प्रॉब्लम्स आई उनका इन्होंने बहुत ही अच्छे से सामना किया। और ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें सिखाती है कि लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको ये क्यों ना लगता हो कि अब आपके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है या आप किसी और तरह से किसी चीज को नहीं अचीव कर पा रहे हो, या फिर कभी आपका ऐसे भी सामना हो जहाँ आपको ये लगे कि अब आपकी लाइफ आपको ड्रैग कर रही है, यानी अब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी होप लूज नहीं करनी चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब स्टोरी के बाद आइए हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। आपको बताना है कि कैप्टन ने क्या क्या स्टेप लिए। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगैन। तो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब मौसम खराब हो गया था, तो इसमें आप लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन, सो ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड हैवी मूरिंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टेम, देन दे डबल फास्टेंड एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। क्वेश्चन 2, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वॉटर इन द शिप। पानी में जब जो शिप है उसके अंदर जब पानी भरने लग गया था, तो उसके लिए कैप्टन ने क्या किया। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर, द कैप्टन स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। When the two hand pumps blocked and the electric pump short-circuited, he found another electric pump, connected it to an outpipe and started it. Question 2. Describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January. 4 और 5 January को ship में जितने लोग मौजूद थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? On January 4th, the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out water. They had their first meal in almost 2 days. Their respite was short-lived. They faced dangerous situation on January 5th. Fear of death loomed large. They were under great mental stress. Question 3. Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give subtitle to each section. तो स्टूडेंट्स, 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है इस टेक्स्ट को और एक सबटाइटल देना है इन तीनों को। जब आप रीड कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि बीच में ना लाइंस डाली गई थी, तो वो लाइंस उन सब सेक्शंस को अलग करने के लिए ही डाली गई थी। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन अफ्रीका। The narrator is relaxed and full of confidence as the weather deteriorated. They faced gigantic waves. They took precautions to save themselves and struggled with the disaster. The narration becomes grim, but it exudes the fighting spirit, confidence and strong will power. By the morning of 6 Jan, Wave Walker rode out of storm and by the evening they sighted Il Amsterdam Island. The narrator is now relaxed, joy and complete confidence are apparent. Talking about the text, discuss the following questions with your partners. The students, यहाँ 4 questions दिए गए हैं, हम सभी अब मिलकर इन्हें discuss कर लेते हैं. Question 1, what difference did you notice between the reaction of adults and the children when they faced danger? तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया बच्चों में और बड़ों के बिहेवियर में जब उनके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन दे फेस्ड द डेंजर। द अडल्ट्स फेल्ट द स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस बट प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू फेस द डेंजर्स। दे टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगन। They equipped everyone with lifelines, waterproof clothes and life jackets. Larry and Herb worked cheerfully and optimistically for 3 days continuously to pump out water from the ship. Mary replaced the narrator at wheel when the deck was smashed and steering the ship was very important. She also served them meal after 2 days of struggle against odds. The narrator performed his role as captain with courage, determination, resourcefulness and full responsibility. He took repair work and provided apparatus and directions needed to protect the ship. He also managed in steering the ship towards the island, whose name was El Amsterdam. The children suffered silently and patiently. Sue did not want to bother her father with her troubles. John acted courageously. He was not afraid to die if all of them perished together. Question 2. How does the story suggest the optimism helps to endure the dire stress? तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें कैसे पता चलता है कि अगर आप आशावादी रहोगे, आपके मन में पॉजिटिव बात रहेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इससे जो आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है उसे आप कैसे कोप अप कर पाओगे, स्ट्रेस से आप कैसे निपट पाओगे? द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू एंड्योर द डायर स्ट्रेस. द बिहेवियर ऑफ फोर एडल्ट्स ड्यूरिंग क्राइसिस बियर्स इट आउट. Larry Vigil and Herb Seechler were two crewmen. As the mighty waves smashed the deck, water entered the ship through many holes and openings. Right from the evening of January 2, Larry and Herb started pumping out water. They worked continuously, excitedly and feverishly for 36 hours. It was a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 4th. They remained cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situations. The narrator did not lose his courage, hope, or presence of mind while facing problems. He did not worry about the loss of equipment. He used whatever was available there. His self-confidence and practical knowledge helped them to steer out of storm and reach the El Amsterdam island. Mary stayed at the wheel for all those crucial hours. She did not lose hope or courage. Question 3. What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? जब कोई ऐसा experience आ जाए, ऐसा situation आ जाए, जब हम बिल्कुल मौत के मुंह में खड़े हों, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस से हम क्या सीख सकते हैं? Hazardous experiences may bring us face to face with death, but they impart us many important lessons of conduct. Life is not always a bed of roses. We must react to dangers and risk with patience and confidence. Adversity is the true test of character. The purity of gold is judged by putting it in fire. The hazardous experiences bring out the best in us. Coward person die many times before their death. Fear is a negative feeling and leads to inactivity and abject surrender to circumstances. Such sailors or soldiers lose the battle against the odds in life. On the other hand, person with self-confidence, courage, resourcefulness, and presence of mind face all dangers boldly and overcome all disasters. Their sharing and caring attitude inspire others also to face the adverse circumstances boldly and tide over them. So basically, whenever we come face to face with hazardous experiences, we learn a lot, which are very important in our daily conduct of life. Question 4. Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? यहाँ पूछा गया है कि लोग ऐसे experiences को क्यों करना चाहते हैं जब उन्हें पता है कि इसमें कितना ज्यादा risk है. जैसे इन लोगों ने सोचा कि ये पूरी धरती का चक्कर लगा कर आएंगे शिप में बैठकर, जबकि इन्हें पता था कि इतने खतरनाक समुद्रों से भी इनका सामना हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लिखेंगे मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर. ये तो आप भी मानते होंगे. द ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल ऑफ एक्सप्लोरिंग अननोन लैंड्स, डिस्कवरिंग वेल्थ एंड ब्यूटी लाइंग हिडन इन फार ऑफ लैंड्स inspire brave hearts to stake their life of rest and repose. Perhaps they value one crowded hour of glory more than a long, uneventful life of sloth and inactivity. It is true that sometimes adventures are quite risky and prove fatal. द फेलियर्स ऑफ सम पर्सन डू नॉट डिसकरेज द रियल लवर्स ऑफ एडवेंचर. दे ड्रॉ lessons फ्रॉम द shortcomings एंड errors ऑफ द अदर persons एंड मेक फ्रेश attempts विद ग्रेटर zeal. Part of the charm of an adventurous expedition lies in adapting oneself to the circumstances and overcoming the odds. The success of an adventurous expedition brings name, fame, and wealth. History books are full with the accounts of famous explorers like Columbus, Vasco da Gama, Captain Cook, and Captain Scott.
Thinking about language. First, we have come across words like gale and storm in the account. Here are two more words for storm. Typhoon, cyclone. How these words does your language have for storm?
So students, storm word hai, tufan hai. Uske liye hum cyclone, aise shabdo ka bhi use kar sakte hai, typhoon ka bhi.
Aapki apni language mein kitne tarah ke shabd hai ek tufan ko batane ke liye? Use yahan par zarur batayega. चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पर आइए. हेयर आर द टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स. याच, बोट, कैनो, शिप, स्टीमर, स्कूनर. थिंक ऑफ सिमिलर टर्म्स इन योर ओन लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स, किसी भी वेसल के लिए यानी किसी भी जहाज के लिए इंग्लिश में काफी सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. आपकी भाषा में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं ये जरूर बताइएगा. कैटामरान इज अ काइंड ऑफ बोट. Do you know which Indian language this word is derived from? Check the dictionary. तो catamaran करके एक boat है. एक boat की type होती है. आपको dictionary में check करना है कि ये कौन से Indian word से लिया गया है ये नाम. Fourth, have you heard any boatsman song? What kind of emotions do these songs usually express? तो क्या आपने कभी किसी नाविक का song सुना है? और इन songs में कैसे emotions express किए जाते हैं उनके बारे में भी सोचिए. Working with words, first, the following words used in the text as ship terminology are also commonly used in another sense. In what context would you use the other meaning? तो students, यहाँ कुछ words दिए गए हैं जिन्हें हम दूसरे context में भी use कर सकते हैं. आपको dictionary में इसे देखना है कि किन किन context में word use हो सकते हैं, यानी इनके क्या क्या मतलब हो सकते हैं. ये words हैं north, stern, boom, hatch, anchor. Second, the following three compound words end in ship. What does each of them mean? So students, यहाँ तीन words दिए गए हैं, airship, flagship, lightship. आपको dictionary में check करना है कि इनका क्या मतलब है. Third, the following are the meanings listed in the dictionary against the phrase take on. In which meaning is it used in the third paragraph on the account? Take on, take on, take on. तो टेक ऑन के तीन मतलब दिखाए गए हैं यहाँ पे. पहले का मतलब है टू बिगिन टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और अपेयरेंस टू अज्यूम. सेकंड का मतलब है टू एम्प्लॉय, टू एंगेज, टू एक्सेप्ट एज समवन्स अपोनेंट इन अ गेम, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फ्लिक्ट. और थर्ड मतलब है टू डिसाइड टू डू, टू अलाउ, टू एंटर अ बस, प्लेन और शिप, टू टेक ऑन बोर्ड. तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड पैराग्राफ में यूज किया गया है टेक ऑन, उसका क्या मतलब होगा? इन तीनों मतलब को आप ध्यान से पढ़िए और फिर कंटेक्स्ट में देखिए कि कौन सा मतलब फिट हो रहा है. थिंग्स टू डू. क्वेश्चन वन. गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ पिक्चर ऑफ अ याच. लेबल द पार्ट्स ऑफ द याच यूजिंग द टर्म्स गिवन बिलो. तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 पर आइए. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है याच की और बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको इन याच के पार्ट्स को लेबल करना है कि ये कौन सा पार्ट हो सकता है. इसकी हेल्प आप नेट से भी ले सकते हैं या किसी बुक में से भी ले सकते हैं जहां पर आपको शिप यानी याच के पार्ट्स के बारे में बताया गया है. सेकेंड, हेयर इज सम इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट ऑन एल एम्स्टरडैम. यू कैन व्यू इमेजेस ऑफ एल इफ यू गो ऑनलाइन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ एल एम्स्टरडैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे इसकी लोकेशन, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो किसका आइलैंड है, उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, सेंसस नोट्स क्या है और लैंड एरिया कितना उसने कवर किया है. ये सारी इंफॉर्मेशन है एल एम्स्टरडैम के बारे में, वही टापू जहां पर ये लोग गए थे बचने के लिए. थर्ड, लोकेट एल एम्स्टरडैम ऑन द वर्ल्ड मैप. अब आपको वर्ल्ड मैप पे यानी पूरी दुनिया के मैप पे इल एम्स्टर्डम को लोकेट करना है कि इल एम्स्टर्डम कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इसमें हमने देखा कि ये कितने करेज से भरी हुई स्टोरी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर देने हैं और एक्सरसाइज के बाकी के पार्ट्स को और एक्टिविटीज को भी कंप्लीट करना है। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।